ಅಭಿಲಿಗೆ ಸಾರ್ ಡಿಭೋಟಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ 300 ಮೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಚೇನ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಚೇನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಸ್ ಐ ಸಾ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ವಹಾ ಪರ್ ಭಾಲು ರಹತೆ ಹೇ ಹಿರನ್ ರಹತೆ ಹೇ ಊಪರ್ ಮೇ ಬರ್ಫ್ ಪಡ್ತಾ ಹೇ ಔರ್ ಶರಣಾಗತಿ ಗಾಂವ್ ಮೇ ದೇಖಾ ಸಭೀ ಲೋಗ್ ಭಜನ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಮಾಲಾ ಕಿ ಝೋಲಿ ಔರ್ ಆರತಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೇ ತುಲಸೀ ಜೀ ಕಿ ಆರತಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೇ ಔರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ಭೋಜನ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಹಮ ಲೋಗ್ ಉತ್ನಾ ಕಠೋರ ನಿಯಮ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಜಿತ್ನಾ ವೋ ಲೋಗ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಪಹಾಡ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಮೇ ದೇಖೋ ಬಿಜಲಿ ಭೀ ನಹೀ ಹೇ ವಹಾಂ ವೋ ಸೂರ್ಯ ಕಿ ರೋಶನಿ ಸೆ ಕೈಸೆ ವೋ ಬನಾ ಲೇತೆ ಹೇ ಥೋಡಾ ಸಾ ಬಿಜಲಿ ಕಾಮ ಚಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಗುಫಾ ಬನಾ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೇವ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾ ನಾಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವನ್ ಅಂಡ್ ಹೀ ಸೋ ಫೇವರೇಬಲ್ ಟು ಮೀ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಹೋನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದೇ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಹೀ ಅಲೋನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೀ ವಾಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಹೀ ಟೂಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಲ್ ದಿ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ they declared that anyone should not come to me but everyone come so is tarah se bahut bada bhari wahan par prachar hua jahan jahan par gaya mandir bane hue hain there are so many temples especially kitna baja especially in a very few days few years he translated chaitanya chaitamrita First he translated Srimad Bhagavat Gita. He translated Srimad Bhagavatam. He translated Chaitanya Charitamrita. Bhakti Rasami Sindhu in a very sutra. So many books. And he distributed lakhs and lakhs, I think that crores of books all over the whole world. And thus he wanted that all should be they should adopt varnashram dharma bhakti will be afterwards but let them be established in varnashram dharma as Srila Prabhupada bhakti siddhant saraswati did first in the same daiva varnashram dharma bidi cigarette churut ityadi sab band karke aur wahan par kar पीछे से इस कोन में कुछ गड़बड़ी हुई दे नेग्लेक्टेड सीनियर वैष्णव दे नेग्लेक्टेड प्योर डिवोशन भक्ति एंड दैट इज व्हाई दे बिकम अपोजिट द लेफ्ट इज कोन दे आर डूइंग हरिनाम एंड दे आर फॉलोइंग स्वामी जी बट no iskon with no relation with iskon but when I went all came to me so many sannyasis renounced order persons came to me about 10 who left iskon and they left also sannyas also when they came to me I embraced them and told that from again you should chant Harinam and you should do and you should follow Swamiji and his principles and read his books so I became so glad there in my preaching everywhere preaching kewal yahi nahi England Holland Canada Mexico Costa Rica Brazil aur niche Latin Americans and idhar mein purab mein udhar mein France German aisa koi desh nahi European country mein yahi nahi purb mein bhi in east also Australia Fiji, Bali, New Zealand, Holland,
Malaysia,
सब जगह में उनकी पुस्तकें पहुंची. All over the whole world these books were distributed. But now they want new things. Nothing new now. So my books are going in new shape. And they are so much उसे पसंद कर रहे हैं. They are liking all books. तो आज उनका आविर्भाव तिथि है. टुडे इज हिज अपेरेंस डे. हिज फादर गेव हिम मृदंग एंड करताल फॉर प्ले एंड ए ठाकुर मूर्ति. स्टिल दैट ठाकुर मूर्ति इज देयर इन कलकत्ता. ही वॉज बर्न इन कलकत्ता. ही टूक संन्यास हियर इन दिस प्लेस वेयर वी आर सिटिंग. आई वॉज सिटिंग हियर. गुरु महाराज वॉज सिटिंग हियर एंड ही वॉज सिटिंग देयर. एंड वन पर्सन इज स्टिल हियर. ही शेष साई प्रभु. शेष साई ब्रह्मचारी ही वॉज हियर हु वॉज डूइंग कीर्तन एंड कृष्णदास बाबाजी महाराज. एंड देर वर सो मेनी ऑल्सो ब्रह्मचारी बट हियर दे आर नॉट प्रेजेंट बट वी आर प्रेजेंट. And after this, he went to Jhansi for preaching, and he took a DT there to establish in a mandir. But that DT was not established there. He could not establish much there. So that DT Chaitanya Mahaprabhu came here, and he gave here, and it was established here. See, Chaitanya Mahaprabhu is here. No? Bade wale. So, is tarah se. आज उनका आविर्भाव तिथि है. आज 9 बज रहा. 9:30 बजे के अंदर में पारण है. अभी हम लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि देने जा रहे हैं. दोज आर वेस्टर्न डिवोटीज आइदर दे आर फीमेल आर मेल दे शुड गो देयर ऑल जस्ट एट वंस. ऑल द डिवोटीज वेस्टर्न डिवोटीज शुड गो देयर. एंड वहां से हम आप लोग थोड़ा सा इधर में आ जाएं और वो अपने गुरुजी के चरणों में पुष्पांजलि देंगे. इसलिए आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए. तो आप लोग उधर से उठ करके इधर आ जाए. यू शुड ऑल गो.
वर्षा विगत शरद ऋतु आई याद है. वर्षा ऋतु विगत हो गई. काश काश किसको कहते हैं. सफेद सफेद ये सब छा गए हैं. वर्षा विगत शरद ऋतु आई. लक्ष्मण जी वहां पर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं. यहाँ पर बलदेव जी को कह रहे हैं. बड़ी सुंदर दृश्य हो गया. लताओं में फूल भरा है. पशु पक्षी चहकने लगे. न अधिक ठंडा न अधिक गर्मी. बलदेव जी कहते हैं देखो तो ये पेड़ों की शोभा. आज पेड़ हरियाले हो रहे हैं. इनमें फल फूल लदे हुए हैं. मानो बसंत ऋतु आ गई. वृंदावन की समस्त ऋतुएं ही मानो बसंत ऋतु होती हैं. तो पेड़ कैसे उपकारी हैं. यदि किसी मनुष्य को होना चाहिए तो पेड़ जैसा उपकारी होना चाहिए. पेड़ से सीखो. पेड़ अपने लिए जीवित नहीं रहते. दूसरों के लिए जन्म लेते हैं. दूसरों के लिए मरते हैं. उनका पेड़ उनकी गुठली उनका मंजरी उनके फूल पत्ते छाल लकड़ी सब कुछ परार्थ के लिए होता है. दूसरों के उपकार के लिए होता है. देखो मनुष्य से तुलना करो और जीवों से तुलना करो. सभी लोग कुछ स्वार्थी रहते हैं. विशेष करके मनुष्य. जो मनुष्य पेड़ों की भांति दूसरों के लिए जीवता रहता है वह अजर अमर. वो वैष्णव है. वैष्णव के बिना ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि वैष्णव लोग कृष्ण के लिए ही प्राण धारण करते हैं. जब कृष्ण के लिए प्राण धारण करते हैं तो सबके लिए हो जाता है. क्योंकि तस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि. इसलिए यदि किसी को जीवित रहना है तो पेड़ों से सीखें कि कैसे दूसरों के लिए उपकार किया जा सके। हम लोगों को भी, साधक को भी ऐसा होना चाहिए, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए उपकार। सबसे बड़ा उपकार क्या है? संसार में भगवान के विपरीत रहकर, विमुख रह करके जो लोग अपने सुखों में तन्मय हैं, भगवान क्या है, भक्त क्या है, ये कुछ नहीं जानते, भक्ति क्या है, उनकी चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ देना, ये सबसे बड़ी दया है। इससे बढ़कर के और कोई दया नहीं है। उनका अंतर और बाहर दोनों एक होता है वैष्णवों का। तो इसको पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए। आज देखो गोवर्धन जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, हरियाली चारों तरफ में छाई, फूलों से सुगंधित हो रहा है, वायु भी सुगंधित चल रही है, शीतल मंद सुगंध चल रही है बयार। कहते हैं कि धन्य यम अद्य धरणी तृण बिरु तत्त इयम 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 मैंने क्या धरणी, आज ये धरणी धन्य है। धन्य मैंने किसको कहते हैं? धन से धन्य, जो धन से परिपूर्ण हो उसको कहते हैं धन। संसार में बहुत प्रकार के धन हैं, किंतु सबसे बड़ा धन क्या है? भक्ति धन, प्रेम। कृष्ण के प्रति यदि है प्रेम तो ये बड़ा सबसे धन है। धर्म क्या है? धर्म ही धन है। और सब प्रकार के धर्मों में सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षरे, अधोक्षत कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वही सबसे बड़ा धन। मनुष्य मात्र के लिए, पशु पक्षी सबके लिए, जीव मात्र के लिए यही परम धन। जिसको धर्म रूपी धन नहीं है, भक्ति रूपी धन नहीं है, तो वो पशुओं से भी गए बीते हैं। आज ये पृथ्वी आज ही धन्य है। और तृण विरुध इत्यादि ये सभी धन्य है, किस लिए? उसी के लिए बात ला रहे हैं। धरणी आज धन्य, आज क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं पाद स्पर्शो द्रुमलता करजाभिमृष्टा। आज धन धरणी धन्य है और इसके तृण गुल्म लताएं ये सभी धन्य है, क्योंकि कृष्ण का ये पदों को स्पर्श किया है, चरण कमलों का स्पर्श। द्रुमलता करजाभिमृष्टा, धरणी पर अपने चरण रखते हैं, इसलिए धरणी के धरणी स्वयं और उसके ऊपर रहने वाले जो तीन छोटे छोटे हैं विरुद्ध हैं वो भी धन्य हैं। कभी कृष्ण का चरण कमल उनसे भी लग जाता है। द्रुमलता करजाभिमृष्टा, द्रुम जो हैं बड़े बड़े और उस पर चढ़ने वाली जो लताएं हैं करजाभिमृष्टा, उनके हाथों को स्पर्श कर करके आज धन्य। पैर नहीं लिखा क्योंकि बड़े बड़े ऊंचों को पैर रख स्पर्श करने का मौका कम मिलता है, इसलिए कृष्ण ने आज उनको अपने हाथों से स्पर्श किया। नद्यो अद्रय नद्य अद्रय खग मृगा, इनको कृष्ण के चरणों के भी स्पर्श नहीं और हाथों से भी इनका स्पर्श नहीं। नदी अद्र, अद्री माने पर्वत, खग पक्षी, मृगा, मृगा माने जितने हैं गाय और पशु जितने हैं सभी उसमें मृगा में आ गया। इनको क्या करते हैं? सदयावलोकई जिनको हाथों से पैरों से स्पर्श नहीं कर सकते उनको दया, दया माने प्रेम, प्रेम से करुणा पूर्वक नेत्रों से उनके तरफ में देखते हैं और आंखों से उनका स्पर्श कर दिया। जिनका पैर से नहीं हुआ उनको हाथ से, जिनका हाथ से भी नहीं हुआ उनको नेत्रों से स्पर्श करते हैं। बीच में कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके फिर कहते हैं गो गोप्यो अंतरेण भुजयो अपि जत श्रीहात्री। और गोप्यः गोपियां अंतरेण भुजयो, किसी को पद से स्पर्श किया, किसी को हाथ से स्पर्श किया, किसी को अपने नैनों से स्पर्श किया और इन गोपियों को अपने दोनों हाथों के अंदर में, भुजाओं के अंदर में क्या है वस्त्र, उनके वस्त्र से स्पर्श किया। भुजो अपि अंतरेण जत स्पृहासी, जिसकी स्पृहा लालसा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं किंतु आज तक नहीं पाई उन गोपियों को ये, इसलिए आज ये प्रसिद्ध है, इसलिए साधारण रूप में ये इसका अनुवाद है। सनातन गोस्वामी जी अब इसकी टीका कर रहे हैं। अब्द शब्द का प्रयोग क्यों किया, भगवान के भक्त लोग और भगवान के सब अवतार कोई भी हो, चाहे शुकर हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, बरा हो, निसिंह हो, परशुराम हो, राम हो, कल्कि हो, बलदेव जी हो, बुद्ध देव जी हैं, कपिल हैं, इत्यादि हैं, वो जन्म लेकर के आविर्भूत होकर के पृथ्वी का जरूर स्पर्श करते हैं। तो पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा बराह, चौथा निसिंह, इसके बाद में पांचवा बामन। बामन भी पृथ्वी को मापा ना, पृथ्वी पर पैर रख करके तीन डग चले, तीन पैरों में सबको माप लिया किंतु पैर उनका कहाँ होगा, पृथ्वी पर ना, पृथ्वी पर पैर रख करके माप लें और फिर उनको भी अपने माप लिया बलि को, इस तरह से पृथ्वी में पैर रख करके किया। विशेष करके बरा परिरंभरेण, बरादी जी पृथ्वी रसातल में चली गई हैं, प्रलय की बाढ़ में डूब गई हैं और ब्रह्मा जी के नासिका केंद्र से निकलकर विराट रूप धारण करके छलांग लगाई, आगे पैर दोनों और उसके बीच में मस्तक आगे, ऐसे जब कूदते हैं, ऐसे आजकल गोताखार लोग भी आजकल ओलंपिक में भी ऐसे ही पहले हाथ से लेकर के चलते हैं, कूदते हैं ऊपर से, ऐसे बराहदेव जी अपने थुथुन को, मुख को अपने पैरों के नीचे लेकर के ऊपर से एकदम गोलाकार और कूद करके एकदम कहाँ चले गए, सूंघ करके जहाँ पर रसातल में पृथ्वी जी हैं और उनको उद्धार करके ले आए। कैसे उद्धार करके ले आए, कैसे उद्धार किया, मानो अपने मुख के निकट पृथ्वी देवी को, लक्ष्मी पृथ्वी ये भू देवी हैं, उनको रख करके ले आए बड़े प्यार के साथ लेकर के आए और उसके स्थान पर रख। यहाँ पर हाथों से जरूर स्पर्श किया होगा और लेकर के पृथ्वी ने उनको प्रणाम भी किया होगा और लेकर के अपने दांतों पर रख करके लेकर के उनकी धुरी पर रख दिया। नरकासुर उसी समय उसका जन्म हुआ, परिरंभेण परिरंभनेन, परिरंभनेन उनके पसीने से, पसीने से पृथ्वी पर वो नरकासुर की पत्ति। तो बरादेव जी भी उनको स्पर्श किया, अपने चरणों से भी स्पर्श किया, हाथों से भी स्पर्श किया, यहाँ तक कि अपने मुखारबिंद से भी उनको स्पर्श किया, मानो चुंबन कर रहे हो, किंतु उस समय में वो धन्य नहीं हुई। धन्य कब हुई? आज धन्य हो। किस लिए कह रहे हैं ये सब चीजें? इसके बाद में कह रहे हैं अनादि काल से पृथ्वी चली आ रही है और भगवान की विभूतियां जैसे कौन विभूति? शंकर जी विभूति हैं, जितने तेजस्वी लोग हैं वो सब भगवान की विभूतियां हैं, अग्नि भी विभूति है, इंद्र भी विभूति हैं, ये सब चीजें विभूतियां हैं और उनके भक्त लोग भी भगवान के अवतार भी पृथ्वी पर आए। बरा जी भी उनका स्पर्श किया, पृथ्वी जी उस समय धन्य हो गई। अब तुलना मूलक दृष्टि से कर रहे हैं किंतु आज जैसे धन्य हुई पहले धन्य नहीं हुई। धन्य माने उसके जैसे मैंने पहले व्याख्या किया, धन से धन्य या धन्य, जिसके पास में धन है वह धन्य है। धन बहुत प्रकार का, जिसमें धर्म अथवा भक्ति धर्म और भक्ति धर्म में प्रेम धर्म जिसको है वो सर्वोत्तम धनी है। प्रेम धन बिना दस्त दरिद्र जीवन, जिसको प्रेम नहीं है भगवान के चरणों में उनका जीवन धन्य नहीं। तो किसका प्रेम है? उत्तम अधिकारी होंगे तो उनको प्रेम होता है। मध्यम अधिकारी कुछ खोज पाता है किंतु असल में ये होता है उत्तम अधिकारी को, इसके पहले नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं जिसको प्रेमा भक्ति है वो धन्य है। भक्ति ही धर्म है। धर्म इष्टम धनम पुंसाम धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त। जिसको भगवान की भक्ति है, ये भागवत का है श्लोक, जिसको भक्ति है वही परम धनी है और जिसको भक्ति नहीं है वो पशु के समान है। धर्म नहीं ना पशु भी समान है। विशेष करके प्रेम भक्ति वाले व्यक्ति ही धन्य है। क्यों धन्य है? जिनको प्रेम नहीं है वो कृष्ण को नहीं समझ सकते, नहीं समझेंगे। विशेष करके प्रेम में भी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होगा तो कृष्ण को अधिकतर समझ सकेंगे। ऐसे लोग धन्य हैं जो कृष्ण के इस प्रेम को अनुराग को समझ करके कृष्ण की के प्रति प्रेमा भक्ति उनकी सेवा करते हैं। आज ही धन्य किस लिए? जितने भगवान के अवतार हैं समस्त प्रकार के अवतारों में कृष्ण सबके अवतारी हैं और कृष्ण का जो रूप है वो अपना असली रूप मूल रूप क्या है? कैसो रूप। इस कृष्ण के किशोर रूप विशेष करके श्रीमती राधिका के साथ में जो कृष्ण का किशोर रूप है इसकी आराधना करने वाले भक्त भी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। तो मालूम होता है कि आज राधा कृष्ण की उपासना करने वाली ये पृथ्वी जी आज धन्य हुई है। पहले इनको प्रेमा भक्ति उस रूप में नहीं थी, आज हुई है। कैसे? गोवर्धन के निकट। गोवर्धन क्या है? पृथ्वी के ही अंग हैं, बल्कि पृथ्वी के बस्तक्षल हैं पृथ्वी देवी के। राधा कुंड श्याम कुंड पृथ्वी के नेत्र हैं। आज उस पहाड़ गोवर्धन पर्वत के ऊपर में कृष्ण अपने चरणों को रख रहे हैं। गोवर्धन के कुंजों में, वृंदावन के कुंजों में कृष्ण विश्राम करते हैं, सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते हैं, गोपालों के साथ में, गायों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। इसलिए आज ही ये पृथ्वी को ये अवसर मिला, इसके पहले कहीं नहीं मिला। कुंज में प्रवेश करना माने क्या? पृथ्वी के ऊपर ही तो है, गोवर्धन पर्वत है, ये पृथ्वी के ही अंग हैं। राधा कुंड श्याम कुंड में उनकी जितनी क्रीड़ाएं होती हैं वो पृथ्वी पर ही क्रीड़ाएं हैं। इसलिए आज ही मानो ये पृथ्वी जी ये धन्य हुई हैं, क्योंकि आज उनको प्रेमा भक्ति। यदि कहो रामचंद्र तो आए थे, उन्होंने पृथ्वी पर अपना चरण धारण किया और उस पर लीलाएं की कि वो ठीक है दंडकारण्य में गए अपने पिता की प्रतिज्ञा रखने के लिए, राज्य को छोड़ दिया। सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वन में प्रवेश, खड़ाऊं और जूते नहीं लिए, छत्र छत्री नहीं ली, खाली पैर चले। वहां से गंगा को पार करके केवट ने उनको पहले ही चरण धो लिया, कठौती में पानी भर करके लाया। ये कहीं ये कठौती यदि यदि नारी बन गई तो नौका जरूर बन जाएगी, इसलिए कठौती में हम परीक्षा कर लें कि कठौती नारी बनती है कि नहीं, इसलिए कठौती में पानी भर करके ले आया और मलमल करके चरण धोया, कुछ रहने नहीं दिया और चरण धो करके फिर नाव में बैठाया। उसके बाद में चित्रकूट आए, चित्रकूट दिन में कुछ दिन रहे, इसके बाद दंडकारण्य में गए। वहां जाने पर सीता जी का अपहरण हो गया। अब वहां से दुखी होकर के चल रहे लक्ष्मण जी उनके साथ में हार सीते करते हुए विलाप कर रहे हैं। पहले तो दुखी थे किस लिए, राज्य इत्यादि सब छोड़ करके वनवास के रूप में सीता जी को चरण खाली पैर चलते हुए देख रहे हैं, उनको दुख होगा कि नहीं दुख होगा, अपने नहीं तो चले। और सीता जी भी उनके साथ में चल रही हैं, और कभी कंकड़ चुभते होंगे, पत्थर चुभते होंगे, थक जाती होंगी तो क्या करेंगे, दुखी नहीं होंगे, ऊपर से तो प्रेम दिखलाते हैं किंतु दुखी रहेंगे। और दंडकारण्य में सीता जी की चोरी होने के बाद में किष्किंधा आने तक और किष्किंधा के बाद में सारी सेना के साथ में समुद्र को पार कर लंका में गए और इतना युद्ध किया, खाली पैर किया, और इसके बाद में खाली पैर नहीं रहा, इसके बाद में क्या विमान पर चढ़ करके अयोध्या आकर के राज सिंहासन में लिया, जूती पहन ली, अब जब चलेंगे तो जूती पहन कर। तो इसमें रामचंद्र जी के चरणों का पृथ्वी ने स्पर्श पाया किंतु पृथ्वी जी जरा दुखी होंगे, आज हमारे आराध्य देव बड़े दुखी होकर के जा रहे हैं। सौभाग्य तो उनका है जो रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श मिला, बात तो ठीक है, किंतु कुछ पृथ्वी जी दुखी हो रही होंगी, आज हमारे आराध्य देव बड़े दुखी। और उस राम के, वराह देव के और समस्त अवतारों के मूल अवतारी स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो भी किशोर अवस्था में, जिस समय में अभिसार कर रहे हैं और उनके चरणों में कुमकुम लगा हो, और कुमकुम जब सवेरे जब वो घर में लौट रहे हो, उस कुमकुम के साथ में चरणों का स्पर्श पृथ्वी ने किया, उनको रोमांच हो आया। कैसे रोमांच हो आया, रोमांच हो आया मानो सब नई नई खोपलें निकल गई घासों, ये पृथ्वी का रोमांच। और हंसने मुस्कुराने लगी, मुस्कुराया कैसे, फूल खिले और आंखों से आंसू बहने लगे, माने नदियों से झरनों से, आज पृथ्वी धन्य हो गई, आज कृष्ण का वह चरण कमल जो कुमकुम से भरा हुआ, ये कुमकुम कहां से आया, गोपियों के सियंगों से, और उसके द्वारा ये इस पर पृथ्वी पर लगाया, पृथ्वी पर ही आज हमारा था किशोर कृष्ण गोपियों के साथ में संयुक्त कुमकुम के साथ आज पृथ्वी पर अपना चरण कमल रखा, कैसा धन्य हुआ होगा, हो अभी पृथ्वी, आज तक ऐसा कभी उसको सौभाग्य नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं धन्य धन्य यम अद्य धरणी तृण विरुधस्तत्। और कह रहे हैं कृष्ण का अपना रूप किशोर रूप है। कृष्ण का रूप जो है अपना क्या है? नव किशोर, नटवर, गोपवेश। अब यही रूप उनका मूल है, किंतु ये होने पर भी उसमें बाल्यावस्था सी किसी को दिखती है कुछ दिनों के लिए, उसी में पौगंड अवस्था दिखती है और उसी में कुछ जुआवस्था भी दिखती है, किंतु मूल रूप कृष्ण का भक्त लोग इसी रूप की आराधना करते हैं और कृष्ण नित्य रूप में इसी रूप में रहते हैं। आज पृथ्वी देवी को स्वयं भगवान सबके अवतारी जो कृष्ण हैं, वो भी परम रसिक हैं, ऐसे रस के समुद्र हैं, ऐसे कृष्णचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करने का है। वो भी गोपियों के अंगों के कुमकुम के साथ में ये मिला, ये सौभाग्य आज तक पृथ्वी को नहीं, इसलिए मानो आज ही पृथ्वी ये। वो भी कैसा, अथवा कह रहे हैं त्रीण विरुधस्तत् पाद स्पर्शो, इनके लिए पाद स्पर्श बतलाया, क्योंकि छोटे छोटे हैं, इस पर चल सकते हैं, कृष्ण गोचारण करने के समय में चल रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि कृष्ण के चरण को स्पर्श करने की अपेक्षा गोपियां और उनमें जो सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधिका चंद्रावली इत्यादि हैं, ललिता विशाखा, इनके चरणों के स्पर्श से और भी धन्य है। अन्य अवतारों में ये सब संभव है, क्यों? जिनके चरणों का स्पर्श स्वयं कृष्ण करते हैं और क्या कहते हैं, स्मरकरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लम, कृष्ण स्वयं जिनके चरण के स्पर्श से तो और सब धन्य हो रहे हैं और कृष्ण स्वयं जिनके चरणों को स्पर्श करके धन्य हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं पद स्पर्शो, पृथ्वी तो उनके चरण के स्पर्श से हो रही है और कृष्ण स्वयं किसके स्पर्श से हो रहे हैं, गोपियों के चरण स्पर्श से अपने को धन्य मानते हैं। वो क्या है, जस्या कदापि वसनोंचलोके नलोत्त धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी जो गंद दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमस्त विश्वानुभू, कृष्ण धन्य हो रहे हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं, किस लिए? राधिका जी का स्पर्श दूर रहे, राधिका जी के अंचल वसन का जो अंचल है उसमें हवा स्पर्श करके धन्याति धन्य हो गई, हवा उनके उनका गंध का स्पर्श नहीं, उनके वसन के अंचल का गंध जो कि राधा जी के अंगों से स्पर्श होने से वो सुगंधित हो रहा है, उसको गंध को पौन लेकर के वो कृतार्थ हो गया और कृतार्थ के फिर आगे बढ़ा, कृष्ण को स्पर्श किया राधा कुंड का पानी स्पर्श करते हुए और भी सुशीतल और सुसंगित हो गया और कृष्ण के अंगों में लगा धन्याति धन्य पवन न कृतार्थ मान, अपने को कृतार्थ, आज हमारा जीवन राधिका जी और गोपियां कैसी हैं, इसलिए वो करें आज कृष्ण स्वयं उनका पद स्पर्श करते हैं, अपनी मुकुट माने मोर पंख और अपनी बंसी उनके चरणों में रख रहे हैं। आज से ऐसा नहीं करूंगा, आज तो हमें क्षमा कर दो, हम अपना सिर तुम्हारे से, जिसको जयदेव जी नहीं लिख सके कोई भी नहीं लिख सका, जिसको रूप सनातन इत्यादि लिख सकते हैं दूसरा नहीं लिख सकता, इसलिए पद स्पर्श का एक सनातन गोस्वामी ने नया अर्थ दिया। पृथ्वी तो धन्य हो रही है किंतु आज जिनके चरणों को धन स्पर्श करके कृष्ण धन्य मान रहे हैं उनके भी चरण को ये स्पर्श कर रही है, ये इसके अंतर्भाव्य इसका अर्थ है। द्रुमलता कर जा मृष्टा, और पृथ्वी तो धन्य है, आज पृथ्वी के द्रुम कौन सा द्रुम इत्यादि, जैसे श्रृंगार वट, भांडीर वट, बंसी वट, कौन जिस पर चढ़ करके कदम बठे इत्यादि वृक्ष कैसे हैं। वृंदावन के पेड़ ऐसे ही है सब वृक्ष। बचपन में पौगंड अवस्था में कृष्ण पेड़ों पर भी चढ़ते थे अपने सखाओं के साथ और तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, भोजन भी उसी पेड़ों की डालियों में लटका देते, जिसकी डालियां कृष्ण के भोजन को वहन करती हैं, जिस पर लटकाते हैं, जिसकी छाया में कृष्ण खेलते हों सखाओं के साथ हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, डालियों पर चढ़कर जमुना को डाली के ऊपर से ही पार कर जाते हैं पुल से दौड़ते हुए, इस तरह से जो क्रीड़ाएं करते हैं, जिस क्रीड़ा के अंदर में भांडी के अंदर में नंद बाबा जब कृष्ण को लेकर के गोदी में जा रहे हों और उनकी गोदी से कृष्ण राधा जी की गोदी में आ गए, बन बड़ा सुहावना, मेघ आकाश में गर्जन कर रहे हों, काले काले मेघ, उसकी घटाओं से वो वन भी काला हो गया और काले पेड़ और काले पत्तियां और भी काला हो गया। उसमें राधा जी कृष्ण को लेकर के अंतरित होकर के भांडीर वन में उपस्थित हुए, वहां पर उनके साथ में उनका विवाह हुआ होगा, ब्रह्मा जी विवाह हुआ, वहीं पर बंसी बट है जहां पर तिरास हुआ, वहीं पर वेणुकूप है जिसे गोपियों के प्यास लगने पर उनकी प्यास बुझाई, अथवा अपवित्र कृष्ण होने पर गोपियों के कहने से वेणु से सब तीर्थों का आवाहन करके और उसमें स्नान किया, ये सब लीलाएं जो कहां हुई, ये सब पेड़ों के अंदर सब प्रकार की लीलाएं करते हैं, किंतु पेड़ों जब किशोर अवस्था में आ गए अब पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे, अब अधिक बालपन में गोपियों के वस्त्रों को लेकर के चोरी, बालपन की ये बात है, बालकपन या पौगंड की, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए, बच्चे सब पेड़ पर चढ़ते हैं, आप लोग चढ़ेंगे, आप लोग तो युवा अवस्था की जरूरत है चढ़ने की, या यही चढ़ सकेंगे, बाल्यावस्था में कुछ चढ़ सकते, तो इसलिए कह रहे हैं दुर्मलता कर जाभिमृष्टा, बड़े पेड़ों पर जिस पर चढ़ नहीं सकते, आज पृथ्वी के ये धन्य ये हैं द्रुम और लताएं, पेड़ और लताएं, इसलिए कह रहे हैं यदि किसी मैया के सामने बाप के सामने उसके बेटी की प्रशंसा की जाए, वाह ये बेटा बहुत सुंदर है, लड़की बड़ी सुंदरी रूपवती और गुणवती है, और उसको प्यार करके उसको आशीर्वाद दे दें या उसको गोदी में लेकर के चुंबन करें, उसको आशीर्वाद दें, उसकी प्रशंसा करें, उसको मिठाई दें, मैया और बाप उसके कृतार्थ हो जाते हैं। तो ये पेड़ों की कृतार्थता से पृथ्वी यहाँ पर कृतार्थ हो रही है, ये पृथ्वी जो धन्य है, जो प्रसंग उठाया ये अप्रसंगिक नहीं पौ की प्रसंग में है, पेड़ों की भी जो प्रशंसा कर रहे हैं, आज पेड़ भी धन्य है, जिस पर बलपन पौगंड अवस्था में पेड़ों पर चढ़ते थे वो भी ऐसे नहीं गोपियों के वस्त्र लेकर के चढ़ रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं किस लिए, बंसी बजाते हैं कदम बटेर पर राधे राधे नाम उच्चारण करते हैं, गायों को पुकारते हैं, कपिला जमुने पिशंगी पीताम्बरी धवली ये सब करते हैं, श्यामरी ये सब गायों को पुकारते हैं, जिस समय पुकारते हैं वो पेड़ धन्य नहीं होगा, पैरों का तो स्पर्श जरूर होंगे किंतु वो पहले में ले आए, दूसरे में कह रहे हैं कर जाभिमृष्टा, करों के द्वारा उनका स्पर्श करते हैं, लताएं फूल से भरी हुई है गोवर्धन के निकट में कुसुम सरोवर, तरह तरह के कुसुम फूल खिले हुए हैं, कृष्ण उनको तोड़ रहे हैं, राधा जी के रास के अंतर ध्यान हो जाने के बाद में कृष्ण उनको खोज रहे हैं, खोजने मिलने पर उन्होंने उनके अपने हाथों से श्रृंगार किया, पीछे की गोपियों ने देखा कि यहाँ पर कुछ फूल गिरे हुए हैं, यहाँ पर फूल कैसे गिरेगा, देखा जैसे ये दोनों पैर यहाँ आकर के समाप्त हो गए हैं और ये पैर कुछ कृष्ण का अधिक दब गया है, वो रमणी का पैर दिखना नहीं। उन्होंने अनुमान किया कि उसको ले लिया गोदी में। थोड़ी देर के बाद देखा जी यहाँ पर फूल गिरे हैं, तो उन्होंने देखा जैसे उनका चरण कृष्ण का आधा पंजा के, और ऐसे मालूम कि चरणों के अग्रभाग में बल दे करके पेड़ की किसी डाल को, लताओं की किसी डाल को उस पर चयन कर, क्योंकि ऊपर का फूल तो बाकी है जो स्पर्श नहीं कर, नीचे वाला नहीं है। और देखा यहाँ पर फूल गिरा है, आज यहीं पर श्रृंगार किया। उस समय में कर रहे हैं उत्प्रेक्षा करके उन लताओं को जिनका फूल चयन कर रहे हैं, फूल को ऐसे तोड़ा जाता है दोनों हाथों को लेकर के, इसलिए मालूम होता है आज लता को अथत प्रेयसी को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे उनको मालूम। क्यों? इसलिए तो उन्होंने ध्रुम और लताओं का जन्म लिया है, इसीलिए यह इसी लाभ के लिए यह हमें लाभ मिलेगा जो हमें स्पर्श करें। प्रिया तो हो नहीं सकता, हमारा सौभाग्य इतना नहीं। यदि गाय बन जाऊं तो कृष्ण अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, लता बन जाऊंगा तो भी उसमें फूल चयन करेंगे, उनके स्पर्श से मैं धन्य हो जाऊंगा, इसलिए वह हाथों से। इसमें भी प्रणय रस का को बतला रहे हैं, जैसे हाथ से किसी प्रियतमा को कोई स्पर्श करता है, ऐसे इनको स्पर्श कर रहे हैं। कर्जाभिमृष्टा, बहुत से इसमें श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है सबका, इसको वर्णन के अंतर में इसको ले लो जी कि कैसे स्पर्श करते हैं। गोविंद लीलामृत इत्यादि ग्रंथों में स्पर्श करने का जो है, कैसे गोपियों को स्पर्श करते हैं तो पुलकित हो जाती हैं। इसे कृष्ण जब फूल चयन करते हैं तो इनको भी और भी फूल खिल जाते हैं, और भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। कर्जाभिमृष्टा नद्यो अद्रय खग मृगा सदयावलोकई। अनंतर पद स्पर्श का प्राधान्य होने पर भी हाथों से स्पर्श करना भी कम नहीं बल्कि और अधिक है। हाथों से स्पर्श में प्रेम अधिक हुआ, इसलिए इनका उस पृथ्वी से कम नहीं बल्कि कुछ उत्तरोत्तर वर्धित हो रहा है। अनंतर विचित्र मधुर लीला से परायण गाथियों का स्पर्श करते हैं, कितना लोरी उनकी ऐसे संभालते हैं, गायें ऐसे कर देती हैं, उनके पीठ को बछड़ों से गले से लग जाते हैं, ये सब और भी धन्य है। सचराचर गोपों का को तो सौभाग्य का वर्णन बहुत कठिन है, इनका तो ऐसा है खेल में सब समय खाने पीने रहने चलने, पैरों का भी स्पर्श होता है कृष्ण का, कैसे? जब वो सखा लोग कृष्ण को वहन करके ले जा रहे हैं खेल में हारने के बाद में, उनके चरणों का भी स्पर्श हो रहा है, हाथों का भी स्पर्श हो रहा है, और कृष्ण उनको जबकि लेकर के जा रहे हैं तो उनके चरण भी कृष्ण से स्पर्श हो रहे हैं, उनका भी हाथों से भी स्पर्श हो रहा है। एक साथ में खाते हैं पीते हैं सोते हैं क्रीड़ा करते हैं, इस तरह से उनका और भी सौभाग्य। पृथ्वी से इतना नहीं बातचीत करना, इतना नहीं करते हैं, पेड़ों पर भी पैर रख दिया या उनको स्पर्श कर दिया बस इतना, और इनसे सभी कुछ आदान प्रदान सखाओं से होता है। ये सब पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए ये पृथ्वी का ही एक तरह से पृथ्वी के साथ है। बीच में सखाओं का वर्णन नहीं किया, गायों का वर्णन नहीं कर करके एकदम आए कहां, नद्यो अद्रय खग मृगा सदयावलोक। सदयावलोक मैंने क्या, दयालुता पूर्वक देखना तो दयावलोकन। दया माने प्रेम भी होता है, दया माने प्रेम। कैसे कैसे प्रेम होता है? अरे वो कागज कहां गया है? ये कागज इसमें रखा था, कहां गया? कैसे अखनतांग फलमिदम परम क्या शक्का पशुन अनुगवेशयतो रूपयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुबेनु जुष्टम जैवानितीतम अनुरक्त कटाक्ष जो लोग इसका दर्शन कृष्ण का नहीं किया, जो कृष्ण को उन्होंने एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं बलदेव इत्यादि के साथ में जाते हुए नहीं देखा, विशेष करके पीछे जो जाने वाले हैं बंसी बजाते हुए, और जो दया पूर्वक प्रेम पूर्वक जो गोपियों की तरफ में अपने दृष्टि से उनके तरफ में देखते हैं, और गोपियां भी अपने नैनों से जिनकी आरती उतारती हैं। फुल्लेंदी वरकंत मिंदु वदनम बरहावतन संप्रियम शिवसंक मुदार सीतांबरम सुंदरम नैनोत्पलार्चित तनु नैन उत्पल अर्चित नैनोत्पलार्चित तनु गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगम भूता। गोपियां अपने नैनों से नैन रूपी उत्पल से कमल से उनकी आरती उतार रही हैं, और कृष्ण क्या करते हैं अपनी दृष्टि भंगी